اب اس کی ایک عملی مثال دی گئی. آپ اور میں کہتے ہیں کہ ہم کیسے ویسٹ میں رہتے ہوئے یا غیر ملکوں میں رہتے ہوئے مسلم بنے, اللہ کہتے ہیں جہاں نماز کا وقت ہے نماز پڑھو. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم نماز میں کمی کر لو, خصوصاً جب تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تم کو ستائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. کیا پتا چلا؟ قصر نماز. دیکھیے یہ ہمارے دین کی خوبصورتی, اسلام میں سفر با مقصد ہوتے ہیں. بلا ضرورت ٹریولنگ کرنا اور وانڈر بلائنڈلی اسلام میں پسندیدہ. بعض لوگ کہتے ہیں بس ورلڈ ٹور پہ جا رہے ہیں, کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں, بس ادھر جائیں گے ادھر گھومیں گے. اب اس کے ساتھ کئی فتنے آ جاتے ہیں, جہاں جائیں گے ادھر کے کھانے آپ کے اچھے نہیں لگیں گے, وہاں کے حال حلیے چیزیں آپ کو ڈسٹرب کریں گی. آپ پھریے پوری دنیا میں, جائیں فصیر فی الارض فینظر کیف کان عاقبۃ المکذبین, جائیے عبرت کی نظر سے دیکھیے ایسی جگہوں کو, جا کے دیکھیے جہاں پہلے لوگ تھے. یا پھر آپ جائیے کون سے بن کر, سورۃ توبہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں سائحون, سیاحت کرو, لوگوں کو دین دو, مبلغ بن کے پھریے, دائی بن کے پھریے. اس سوچ سے دنیا میں باہر ایئرپورٹس پہ گلیوں میں پھریں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ کہ واہ یہ بھی ہے, دس از سٹائل. اگر ایک بندہ اپنے آپ کو کسی طرح چلاتا ہوا, ایک میں جانور کا نام نہیں لینا چاہتی, ایک لڑکی اسٹیج پہ آ کے اگر جانوروں کی طرح چلتی ہوئی دکھتی ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کی ماڈلنگ کو لائک کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ بنا کر راہوں میں چلیے, روڈز پہ جائیے تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں, جھجھک دور ہو. آج کیوں لوگ افینڈ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ؟ کیونکہ لوگوں نے مسلمانوں کو دیکھا ہی نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں مسلمان مرد کیسے ہوتے ہیں, مسلمان عورتیں کیسی ہوتی ہیں. تو یہ آپ کا کانفیڈینس آپ کو عزت دے گا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ سفر میں گئے, نماز تو چھوڑنی نہیں ہے, تو اللہ کہتے ہیں کم کر لو. کتنا پیار ہے رب کو آپ سے کہ دو دو کر کے پڑھ لو, فجر ظہر عصر, یہ اس کی پوری ڈیٹیلز ہیں. قصر اب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ ادھر تو خوف کی بات ہے کہ آج بھی قصر پڑھیں کریں گے, تو فرمایا یہ اللہ کا تحفہ ہے, جو اس کو قبول کر لے کر لے. تو سفر میں تھوڑی نماز پڑھنے کا پوری نماز پڑھنے سے زیادہ اجر ہے. اب آپ دیکھیے نماز اور وہ جماعت کی اس کی اہمیت کتنی ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِ فَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, ایک جنگ تھی, یہاں آپ کو ایک ہسٹری کا واقعہ سنا دیتی ہوں کہ مسلمان دشمن سے کسی سیکٹر پہ لڑ رہے تھے, تو اتنے میں کیا ہوا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا, تو مسلمان نماز میں تھے, نماز جب پڑھی اس کے بعد فارغ ہو گئے. آپ کہیں گے یہ کیسی نماز ہے اور کیسی جنگ ہے کہ جس میں بیچ میں نمازیں بھی ہوتی ہیں, وہ اللہ کے حق کو نہیں بھولتے تھے. جب مسلمان ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو جو کفار کا کمانڈر تھا اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو ڈانٹا, کہنے لگا کتنا اچھا موقع تھا, ابھی یہ سارے نماز پڑھ رہے تھے اور جماعت سے پڑھ رہے تھے, میدان جنگ میں اللہ کے نبی جماعت کا اہتمام کر رہے ہیں, آج میرے اور آپ کے اور ہمارے گھر کے مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ آج ہم سوچیں کوئی جنگ نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے, اس کے باوجود ہم جماعت مسجدوں کو ویران کیے ہوتے ہیں, لاکھوں ملین بلین ٹریلینز لگتا ہے مسجدوں پہ صرف جمعے کی نماز کے لیے یا صرف چند نمازیوں کے لیے ظہر اور عصر کے لیے, یہ تو ورتھ اٹ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی لوگوں نے جب نماز پڑھی تو لوگ دوسری طرف تیار تھے, لوگوں نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں, بھی مس ون چانس, کوئی بات نہیں, ابھی اس کے بعد ایک ایسی نماز کا وقت آ رہا ہے کہ جو ان مسلمانوں کو اپنی جان مال اور گھر سے عزیز ہے. کون سی نماز ہمیں عزیز ہے؟ خود سے پوچھیے, کیا میری اثر بازاروں اور مالز میں تو نہیں چلی جاتی کبھی کبھی, بعض دفعہ عید کی تیاریوں میں, بعض دفعہ شادیوں کی تیاریوں میں. خیر کافروں نے پلان بنا لیا کہ ٹھیک ہے, جو ہی سارے مسلمان عصر کی جماعت میں ہوں گے ہم سب مل کے ان پہ حملہ کریں گے اور ان کو ختم کریں گے. اللہ کے نبی کو تو نہ پتہ چلتا, لیکن اللہ نے یہ آیتیں اتار کر آپ کو الرٹ دے دیا کہ اب آپ سب نے مل کے نہیں پڑھنی. کیسے پڑھنی؟ آئیے سنیے اور انجوائے کیجئے. اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں. یہ پھر بھی نہیں کہا کہ نماز چھوڑ دو, یہ پھر بھی نہیں کہا کہ جماعت نہ کرو, سارے الگ الگ پڑھ لو, چلو کچھ کر لو, بلکہ پڑھیں گے سب, لیکن کیسے پڑھیں گے؟ سبحان اللہ. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِ فَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, اور اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور جنگ کی حالت میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو, تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنے اسلحے لیے رہے, پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے, اور دوسرا گروہ جس نے بھی نماز نہیں پڑھی آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور وہ بھی ہوشیار رہے اور اپنے اسلحے کے لیے رہے, کیونکہ کفار اس طاقت میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ سب مل کر یکبارگی تم پر ٹوٹ پڑے. اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں, مگر پھر بھی ہوشیار رہو, یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو, اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا. کیسے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے ڈکٹیشنز دے دی. کیا پتا چلا कि जमात की नमाज फिर भी होगी। और आपको होता है कि इस चीज का कुफार पर रोब डलता था। हमारे मुसलमानों का ये ईमान था, जितना हम अल्लाह और उसके रसूल की बात मानेंगे दुश्मनों पे हमारा हमला होगा। एक वाक्य तारीख का सुना देती हूँ कि एक जंग थी तो मुसलमानों को थोड़ी सी शिकस्त हो रही थी। अमीरे लश्कर ने मुसलमानों से कहा कि सोचो कोई सुन्नत है जो तुमने छोड़ी है जिसकी वजह से आज अल्लाह दुश्मन को तुम पर गालिब कर रहा है और तुम्हें पीछे कर रहा है। जब सोचा कहेंगे वो अच्छा आज मिसवाक नहीं की, और मिसवाक करना सुन्नत भी और अल्लाह की रजामंदी भी है। कहा क्या करे, कहा ये दरख्त है इसकी टहनियां उतारो पतली पतली डंडियां और इससे मिसवाक करो और देखना इस सुन्नत पे अमल करने से अल्लाह तुम्हें फतह देगा। उन्होंने ऐसे ही किया, सब ने डंडियां उतारी और मिसवाक करने लगे। इधर ये आप सोचिए ना, जितने 100 या 1000 लश्कर होगा वो सब एक ही काम कर रहे हैं, दुश्मन सामने देख रहे हैं। उनको इतना खौफ तारी हुआ कि ये अपने दांत तेज कर रहे हैं, ये भी हमें कच्चा खा जाएंगे, और खौफ से भाग गए। अल्लाह ने फतह दे दी। मैं और आप सुन्नतों पे आए, अल्लाह ऐसे बहाने बनाएगा कुफार सामने ही नहीं आएंगे। ये आज मैं और आप खुद दूसरों को दावत देते हैं कि हमारे ऊपर आओ। दुआ कीजिए, हम सब अपने लिए और उम्मत के लिए दुआ करते हैं कि आज हमें इतना ही प्यार हो सुन्नतों के साथ। फिर आप देखिए कि यहाँ एक और बात है कि नमाज पूरी करने के बाद अल्लाह का जिक्र करो। ये क्या है, हमारे यहाँ अमूमन क्या है कि नमाज में ही अल्लाह को याद करो, नमाज के बाद बस खत्म। हालांकि असल काम नमाज के बाद शुरू होता है। आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? ताकि आपको एनर्जी मिले और उस एनर्जी को अल्लाह के रास्ते में यूज करें। फजर की नमाज पढ़ी, आपको एनर्जी मिली, ईमान मिला, पेट्रोल की गैस की तरह। अब आपने भाग भाग के नेकियां की, जोहर से पहले आपकी टैंकी थोड़ी सी हल्की हुई, काम हुई, अब लगा गैस खत्म हो रही है, अल्लाह ने कहा जोहर की नमाज पढ़ लो। जोहर में फिर आपका ईमान का लेवल ऊपर चला गया, जोहर के बाद आप फिर भाग भाग के काम कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते के, लोगों के, नेकियों के। गैस यूटिलाइज करें तो और लेते हैं ना, जैसे पिछला खाना यूटिलाइज होता है तो और खाने को दिल जाता है। अगर कोई कुछ ना करे एक नमाज से दूसरे के बीच में, नेकियां नहीं की तो ईमान तो स्टक है, फिर जोहर पढ़ने को दिल ही नहीं करता। जिसका नमाज पढ़ने को दिल ना करे वो चेक करे कि मैंने नमाज से जो एनर्जी मिली थी उसको यूज ही नहीं किया। तो उसको यूज करने का तरीका क्या है कि फिर भाग दौड़ करो, फिर नेकियों को करो, फिर अल्लाह ताला आपके लिए कितने रास्ते आसान करेगा। फिर उसके बाद आगे फरमाया वला तहिनु फी इब्तिगाइल कौम, इस गिरोह के ताकुब में कमजोरी ना दिखाओ। अगर तुम तकलीफ उठा रहे हो तो तुम्हारी तरह वो भी तकलीफ उठा रहे हैं, और तुम अल्लाह से उस चीज के उम्मीदवार हो जिसके वो उम्मीदवार नहीं। अल्लाह सब कुछ जानता है और वो हकीम और दाना है। कितना प्यारा अल्लाह ने कानून दिया कि तुम्हें अपना दीन मुश्किल लगता है ना, तुम्हें नमाजें पढ़नी पड़ रही हैं, रोजे रखने पड़ रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो जंग करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें इस पे अच्छी होप्स कितनी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो दुनिया में और बहुत मेहनतें कर रहे हैं, उनको तो कोई होप नहीं है। देखिए, एक थकन होती है नेकी करके, एक थकन होती है गुनाह करके। क्या नेकी से थकन होती है तो गुनाह से भी होती है? बिल्कुल होती है, आप खुद देख लीजिए। गुनाह की थकन के बाद क्या, गिल्ट, हाय क्यों किया, वक्त जाया किया, खाम खा नींद खराब की, आंखें गंदी, कान गंदे। और नेकी करें और थकन हो तो उसके बाद क्या है, सेंस ऑफ रिलीफ, सुकून, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त तो गुजर ही गया लेकिन अजर मेरे जिम्मे रह गया। एक दफा मैंने एक ऐड देखा था तो उसमें फिटनेस का कोई ऐड था कि मोटे ना हो, तो उन्होंने ये दिखाया था कि एक शुगर, 1 स्पून शुगर जो है जब आप खाते हैं तो उन्होंने बताया कि आपके मुंह में उसका टेस्ट में भी 6-7 सेकंड रहता है, फिर आपके स्टमक में जाता है तो इतनी देर, और उसके बाद इंटेस्टाइन में, और एंड मोटापा होगा वो फॉरएवर रहेगा ना अगर आप केयरफुल नहीं है। तो मैंने उससे ये चीज सीखी थी कि 1 मिनट का टेस्ट है ना सिर्फ चीनी का, अगर आप फीके की आदत डालते हैं फिर आपको फीका अच्छा लगता है, लेकिन वो आपके इर्द गिर्द आपके जिस्म में वजन कैलोरीज की सूरत में रहता है। इसी तरह नेकी करना अगर मुश्किल है या गुनाह करना अगर हमें टेस्टफुल भी लगता है, तो जब कभी गुनाह को दिल जाए कोई चीज करने, बोलने, सुनने, देखने, कहने की, तो फौरन इस मिसाल को सोच ले कि इसके बाद एंड पे क्या होगा। चंद सेकंड के बाद ये बात खत्म होगी। एक चुटकुला होता है, एक गीबत होती है सिर्फ, हम किसी को एक ताना देते हैं, अगर थोड़ा सा सब्र कर ले उसके बाद अल्लाह ताला हमें उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उससे बचा लेगा। लेकिन अगर हम वो कर लेते हैं बाद में, फिर वही गिल्ट बनना है। ये जो डिप्रेशन है ना, ये असल में गुनाहों का बोझ है। इंसान जितना अल्लाह से दूर होता जाता है उतना दुखी हो जाता है। इसके बाद तकरीबन 2 रुकू तक एक ही वाक्या चलेगा, मैं हल्का सा उसका इशारा आपको दे देती हूँ नामों को बताए बगैर। मदीना में एक शख्स था जिसने किसी की जीरा चोरी की। जीरा क्या है, एक किस्म का वेपन है कि जंग में लोग पहनकर अपने आप को दुश्मन से बचाते थे। चोरी करने वाला मुसलमान था और जिसने जिसके घर से चोरी की उसने उसको रखा हुआ था। तो चोरी करके निकला तो वो आटा बाहर की तरफ चलता गया, उसने दूसरों को बता दिया ये कहां से कहां गया। वो शख्स होशियार था, उसने क्या किया कि अगर ये मेरे घर रही कल तक लोग उठ के ढूंढेंगे चोरी सामान तो मेरे घर से निकलेगा, बजाय इसके कि उसको अपने घर में रखता अपने किसी यहूदी दोस्त के घर गया, कहने लगा ये मेरी जिरह है इसको थोड़े दिन रख लो, उसको क्या पता ये चोरी की उसने रख ली। अब नतीजा क्या हुआ कि जब अगले दिन खबर फैली कि जिरह चोरी हो गई, और वो बड़ी कीमती होती थी उस दौर में भी, गुर्बत का दौर था, किस्सा मुख्तसिर के जब देखा तो वो यहूदी के घर में निकल आई। अब वो यहूदी की चोर साबित हो गया, सारे एविडेंसेस उसके अगेंस्ट चल रहे हैं। अब क्या हुआ, इस शख्स को भी पता था कि मैं चोर हूं, इसकी कौम और बिरादरी को भी, इसकी फैमिली को भी पता था। इसके बावजूद जब मुकदमा चला, केस हुआ, तो इसकी फैमिली ने इसकी साइड ली झूठ पे होने के बावजूद, और इन्होंने सोचा कि यहूदी है तो अल्लाह के नबी तो बस लफ्ज यू समझ के छोड़ देंगे, हालांकि उनको ये भूल गया कि अल्लाह के नबी कितने अदल और इंसाफ वाले थे। तो उस पे फिर करीब था कि अल्लाह के नबी सल्लम सिर्फ एविडेंसेस देखते हुए जीव के अगेंस्ट और इस मुस्लिम के हक में फैसला दे देते, लेकिन अल्लाह ताला ने ये सारी आयात नाजिल करके बता दिया कि आपको कभी भी किसी के बारे में देखकर पहले दोनों वे को देखना चाहिए, और किसी का सिर्फ मुसलमान होना उसको नहीं बचाएगा। और यकीन कीजिए ये वाकया इतना हमारी आंखें खोल देता है कि अगर आज हम किसी नॉन मुस्लिम के साथ ज्यादती करते हैं तो नॉन मुस्लिम के साथ ज्यादती पे भी अल्लाह हमसे पूछेगा। तो पिछले सबक में हमने पढ़ा कत्ल की बात है, किसी का आप में से सवाल था कि मोमिन का कत्ल की क्यों बात है, काफिर की क्यों नहीं है, तो मैं यही जवाब उनको दिया था कि अगर कोई काफिर किसी मुस्लिम मुल्क में जिमी बन के रह रहा है, यानी जैसे एक फुली लीगल पर्सन है, तो उसको अगर वो करेगा तो उसको भी वक्त के मुताबिक सजा दी जाएगी। और अगर किसी नॉन मुस्लिम को, मिसाल है नॉन मुस्लिम मुल्क में आप किसी नॉन मुस्लिम को मारते हैं तो उस मुल्क का जो है वो आपको सजा देगा। लिहाजा ज्यादती करते वक्त कभी किसी नॉन मुस्लिम पे भी नहीं करनी। फिर इसी तरह पिछले सबक में एक आयत थी, उसमें आप में से किसी का एक सजेशन आया था जिसमें वो आयत थी कि इनको जहां पकड़ो मारो और कत्ल कर दो, तो इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें क्योंकि ऐसी आयात को बहुत मिस अंडरस्टूड किया जाता है और हमारे बच्चों और बाहर जो लोग रहते हैं उनसे पूछा जाता है। तो मैंने उनको पहली बात तो ये कह दी थी कि देखिए कि जब भी कभी ऐसी कोई बात हो तो आप हमेशा कोई ऐसा इशू बाहर है, कोई कहता है औरत हिजाब क्यों करे, मर्द चार शादियां क्यों करे, तो डोंट सर्व दीज क्वेश्चन, उनको मोटिवेट करके वापस ले आइए ला इलाहा इल्लल्लाह पे। क्योंकि अगर उनको ये इश्यू समझ भी आ गया, व्हाट डज इट मेक एनी डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। असल तो जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह समझ नहीं आता, ये बातें समझ नहीं आती हैं। दूसरी बात आप देखिए कि अगर आप वाकई इसका जवाब लें तो ये मैदाने जंग में मरने की बात है। इसका ये मतलब नहीं कि मुस्लिम्स निकलें और रोड्स पे, सड़कों पे और मॉल्स में जो नॉन मुस्लिम दिखे उनको मार दो, ना ये नबी ने किया ना सहाबा ने किया, और ये इस्लाम की शान ही नहीं है। तो इस्लाम एक पीसफुल रिलीजन है, अगर ऐसा होता तो अब तो दुनिया में कोई काफिर ही ना बचता। तो वो आयते जिनको समझ आ रही है बात, वो जहन में रखिए कि वो उन काफिरों के लिए है जो आपको मारने के लिए आ गए। अब आप देखिए काफिर असले से लैस आकर आपके घर के बाहर खड़ा हो गया गन ले क्रिस्टल लेके, तो क्या दोनों हम कुछ नहीं कहेंगे? तो उससे मुकाबला किया जाएगा, ना कि हर रात जलते और दूसरे। फिर इसी तरह से साल इमरान में आप हम तो काफी सारे अहकाम पढ़ चुके, मेरे और आपके हो या कोई मुसलमान हो, फैसला हमेशा फैक्ट होना चाहिए और खामखा की गलत चीज की साइड लेने लगे। अनज़लना इलैकल ए नबी, हमने ये किताब हक के साथ आपकी तरफ नाजिल की है, इसके मुताबिक लोगों के दिल ले, और वो बड़ा दरगुजर फर अपने नफ्स से खयानतकारों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। ये लोग अपनी हरकतें छुपा सकर इसकी मर्जी के खिलाफ देखते हैं जैसे दिन की रोशनी है। हाँ तुम लोगों ने दुनिया की जिंदगी में तो जगह कौन है जो इन पर अपने पर जुल्म कर जाए, तो लिहाजा वमाए तो इसकी ये कमाई इसी के लिए वबाल खबर है, और वो हकीम और दाना है। फिर जिसने कोई खता या गुनाह करके इसका इल्जाम किसी बेगुनाह पर थोप दिया, इसने तो बड़े बहतान और सरी गुनाह का भार समेट लिया। अगर आप देखें किसी वाक्य को सामने रखे तो आज हम मुसलमान भी ऐसे बहुत इल्जाम लगाते हैं, फलां की साजिश, फलां का फलां। यहां भी तो आप देखिए कि मामला उसी तरह से चल रहा है जैसे आज हमें हालात मिलते हैं। तो इस सारे बातों को सुनते वक्त ये ख्वाहिश रखिए कि अल्लाह ताला हमें हमारी गलतियों को हमारे सर पर डालने वाला बना दे, ऐसा ना हो कि हम दूसरों को ही समझते रहें कि वो हमारी इन सारी चीजों के शिकार हैं लेकिन कसूर सारा हमारा अपना हो। फिर उसके बाद फरमाया वलाउ लफजलुल्लाहि अलैक व रहमतुहु, ऐ नबी अगर अल्लाह ताला का फजल आप पर ना होता और उसकी रहमत आपके शामिल हाल ना होती, तो इनमें से एक गिरोह ने तो आपको गलत फहमी में मुबतला करने का इरादा कर ही लिया था, हालांकि दर हकीकत वो खुद अपने सिवा किसी को गलत फहमी में मुबतला कर नहीं रहे थे और आपका वो कोई नुकसान कर ना सकते थे। यहां से ये भी पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे। आपकी रिवायत एक और हदीस से भी ये बात पता चलती है कि लोगों में इंसान हूं, तुम में से जब दो लोग में से उसकी बात सुनकर बात बड़ी अच्छी बनानी आती है हालांकि वो झूठा था, तले दो उसका नहीं, लेकिन सातों जमीनों का मुझे आपको इसमें क्या समझाया गया कि यहां मैं एक हल्की सी बात करूंगी लॉयर्स होने पे, बीइंग अ लॉयर। इंसान के पास बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं, आप देखिए लॉयर बनना एक बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है अगर आप हक वाले को उसका हक दिलाए, लेकिन अगर आपको पता है कि जो क्लाइंट है वो मुजरिम है तो फिर आप नहीं बोले, फिर आप ऐसा केस ना ले। आप कहते फिर खाएंगे कहाँ से, अल्लाह खिलाएगा। देखिए हर प्रोफेशन अपनी जगह नोबल है, इसी सबक में हम आगे सूरत माईदा में मेडिकल पे भी पढ़ेंगे। अपनी जात में लॉयर होना बहुत अच्छी बात है, अपनी जात में डॉक्टर होना बहुत अच्छी बात है। असल चीज है जिसको देखना है वो क्या है कि हम उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो लिहाजा गलत चीज पे हिमायत करना और उस मुकदमे को जीत जाना, आपको तो पैसे मिल गए लेकिन दूसरे को नाइंसाफी मिल गई, क्यामत के दिन इसका बवाल होगा। इसीलिए ये सारी चीजें जहनों में क्लियर अगर पहले से हो तो ये प्रोफेशन ना तो हमारे मर्दों को नुकसान देंगे ना हमारे बेटों को इंशाल्लाह ताला। लोगों की खुफिया सरगोशियों में अक्सर बेशतर कोई भलाई नहीं होती, सच है। कान में जब बातें करते हैं तो अमूमन अच्छी बातें तो नहीं करते ना। हदीस में मना किया गया कि जब तीन लोग हों तो उनमें से दो लोग कानों में बातें ना करें, क्योंकि तीसरे को खामखा शक पड़ता है कि मेरे खिलाफ बात की जा रही है। हाँ अगर कोई पोशीदा तौर पर सदका खैरात की तलकीन करे या किसी नेक काम के लिए या लोगों के मामला में इस्लाह करने के लिए किसी से कुछ कहे तो ये अलबत्ता भली बात है, और जो कि अल्लाह की रजा जोई के लिए ऐसा करेगा इसे हम बड़ा अजर अता करेंगे। मगर जो शख्स अल्लाह के रसूल की मुखालफत पर कमर बस्ता हो और अहले ईमान के तरीके के सिवा कोई और तरीका अख्तियार कर ले, हालांकि इस पर राय रास वाजे हो चुकी, तो इसको हम उसी तरफ चलाएंगे जिधर वो चला गया। इसको हाईलाइट कीजिए, जिंदगी का एक बड़ा खूबसूरत असूल यहाँ सिखाया जा रहा है, नोवल्ली ही मान तवल्ला, आयत 115 के अंदर है, तुम जिधर चलोगे मैं तुम्हें उधर चिल्लाऊंगा। कैसे ये बात समझ आती है? इंसान का जो इंक्लाइनेशन होता है ना, अल्लाह ताला उसके लिए वही रास्ता आसान करते हैं। आपने रोजा रखकर दूर से यहां आना पसंद किया, अल्लाह आपको ले आए। कोई घर से निकले मस्जिद की तरफ आना चाहे, अल्लाह उसको आने देंगे। कोई क्लब की तरफ जाएगा, अल्लाह उसके लिए क्लब का रास्ता आसान करेंगे। नेकियों और बदियों को चूज करना मेरा और आपका काम है, जस्ट चॉइस इज आवर्स। उसके बाद हमारी मदद अल्लाह करता है। तो हमेशा इस आयत को पढ़ते वक्त मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह तू खुद ही मेरा रुख नेकियों की तरफ कर दे, क्योंकि जब आप गलत काम सोचते हैं फिर करते हैं तो कल क्यामत के दिन अल्लाह को ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला मैंने तो नेकी का इरादा चाहा था आपने गलत कहा। आप अपनी जात से भी देख लीजिए, चलना चाहते हैं चल लेते हैं, बैठना चाहते हैं बैठ जाते हैं, सोने का इरादा करते हैं सो लेते हैं। अल्लाह ने हमारा जिस्म हमारे अंडर कर दिया, तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नेकियों की तरफ चलने वाला बना दे। फरमाए जो बुराइयों की तरफ चलेगा उसका हाल क्या होगा? नवल्लिही मा तवल्लव नुस्लिही जहन्नम वसात मसीरा। जो जिस तरफ चलना चाहेगा हम उसको उसी तरफ चला देंगे जिस पर राह रास वाजे होगी, इसके बाद भी अगर गलत रास्ते पे चलेगा तो हम उसको उसी तरफ चलाएंगे जिधर वो खुद फिर गया, और उसे जहन्नम में झोंकेंगे जो बदतरीन जाए पना है। इन अल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह के हाँ बस शिर्क ही की बख्शिश नहीं इसके सिवा, और सब कुछ माफ हो सकता है जिसे वो माफ करना चाहे। ये आयत भी लोगों को बहुत गलत फहमियों का शिकार कर देती है। लोग कहते हैं देखो हम शिर्क तो नहीं ना करते, तो फिर क्या अल्लाह ने तो खुद कह दिया कि बस शिर्क नहीं माफ करूंगा तो बाकी करूंगा। है ये क्वेश्चन जहनों में, बात करूं इस पे? देखिए पहली बात है कि जो शिर्क नहीं करेगा ना वो गुना भी नहीं करेगा। शिर्क है शिराकत, पार्टनरशिप, जिसको अल्लाह की बड़ाई का एहसास हो जाएगा जो कभी दूसरे के तरफ आएगा, वो जिसको रब की मार्फत मिल गई अल्लाह कितना बड़ा, अल्लाह की जात कितनी बड़ी है, क्या वो शख्स कभी दुनिया में उसकी नाफरमानी कर सकता है? पहली बात यह। दूसरी बात इस आयत में अगर आप हाईलाइट कर लीजिए इस लफ्ज को, लिमई ये शाह, ठीक है अल्लाह ने कहा कि शिर्क तो माफ नहीं करूंगा तौबा के बगैर अगर चले गए तो दूसरे माफ करूंगा, लेकिन सबके तो नहीं कहे, बल्कि लिमई ये शाह, जिसके बाकी गुनाह में माफ कर दूं। तो मुझे और आपको कहां श्योरिटी है कि मेरा नाम लिमई ये शाह में आता है? कल हम कहेंगे अल्लाह ताला आपने कहा था शिर्क के अलावा सारे गुनाह माफ कर दूंगा, ये मेरी हिब्तें इधर क्यों पड़ी हुई हैं, ये मेरी चुगलियां, ये मेरी बेपर्दगियां, ये किधर है? तो अल्लाह ताला कहेंगे तुमने वो नहीं पढ़ा था लिमई ये शाह, जिसके लिए चाहूंगा और मैंने तुम्हारे लिए नहीं चाहा। फिर क्या जवाब होगा? अल्लाह ताला से दुआ कि हमें जरूरत ना दे गुनाहों की। याद रखिए ऐसे गुनाहों की जरूरत जो होती है ना, इस बात की अलामत है कि अल्लाह का खौफ नहीं है। फरमाया मैं युश्रिक बिल्लाहि फकद दल्ला दलालम बईदा, और जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया वो तो गुमराही में बहुत दूर निकल गया।